ਦਾਨਾਂਦਨ ਬ੍ਰਜ ਜਨ ਰੰਜਨ ਜਮੁਨ ਤੇਰਾ ਬਨ Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Rasmi Hare Radha, Rasmi Hare Radha. Jaya Radha, Rasmi Hare Radha. ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಾನ್ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಾನ್ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಾನ್ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय विष्णुपाद परमं सुप्रभाजिका सरस्वत श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव बिंद की नमाचार श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीना श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की नवदीप मंडल श्री धाम मायापुर की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री श्री राधारास बिहारी ललिता विशाखा की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की टाइगोर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिके श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 5 श्लोक संख्या 23 22 में नहीं है ना तात्पर्य नहीं है ना 22 में तो 22 23 दोनों लेते हैं 22 है ना इसमें कौन सा श्लोक 23 है दृष्टया भ्रातः प्रवयस इदानीं अप्रजस्य ते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रज्ञा प्रजा यसंपद्यत यही न श्लोक है दृष्टया भ्रात प्रवयस इदानीं अप्रजस्यते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रजा यत संपद्यत प्रजा यसंपपद्यत दृष्टया भ्रातः प्रवयस इदानीं अप्रजस्यते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रजाय संपपद्यत पढ़िए पढ़ વિદ્યા રબી વિદ્યા હૈ ભી વિદ્યા ભી હૈ રબી ભી હૈ રબી ભી રબી કિધર હૈ દૃષ્ટયા સૌભાગ્યવશ ભ્રાતઃ હે ભાઈ પ્રવયસ અધિક આયુ વાલે આપકા ઇદાનીમ ઇસ સમય અપ્રજસ્ય સંતાનહીન કા તે આપકા પ્રજા આશાય નિવૃત્તસ્ય જિસે ઇસ અવસ્થા મે પુત્ર પ્રાપ્તિ કી આશા ન રહ ગઈ હો ઉસકા પ્રજા પુત્ર યત જો ભી સંપદ્યત ભાગ્યવશ પ્રાપ્ત હો ગયા. અનુવાદ્યમ તાત્પર્ય શ્રીલ પ્રભુપાદજી કે દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદ કી મેરે ભાઈ નંદ મહારાજ ઇસ વૃદ્ધાવસ્થા મે ભી આપકા કોઈ પુત્ર ન થા ઓર આપ નિરાશ હો ચુકે થે અતઃ અબ જબકિ આપકો પુત્ર પ્રાપ્ત હુઆ હૈ તો યહ અત્યધિક સૌભાગ્ય કા લક્ષણ હૈ. કોણ બોલ રહે હૈ? આય વસુદેવજી નંદ મહારાજ સે કહાં પર મથુરા મે. તાત્પર સામાન્યતયા વૃદ્ધાવસ્થા મે પુત્ર ઉત્પન્ન નહીં કિયા જા સકતા. બાત સહી હૈ? કિસી કિસી કો તો હોતા હૈ યે. સામાન્યતયા વૃદ્ધાવસ્થા મે પુત્ર ઉત્પન્ન નહીં કિયા જા સકતા. યદિ ભાગ્યવશ કોઈ સંતાન ઉત્પન્ન હો ભી તો વહ લડકી હોતી હૈ. બાત સહી હૈ? ઇસ તરહ વસુદેવ ને અપ્રત્યક્ષ રૂપ સે નંદ મહારાજ સે પૂછા ઉન્હેં પુત્ર ઉત્પન્ન હુઆ હૈ યા પુત્રી. વસુદેવ જાનતે થે યશોદા કો કન્યા ઉત્પન્ન હોઈ હૈ જિસે વે ચુરા કર લે આયે થે ઓર ઉસકે સ્થાન મે પુત્ર છોડ આયે થે. યહ એક બહુત બડા રહસ્ય થા ઓર વસુદેવ જાનના ચાહતે થે કે નંદ મહારાજ કો પહેલે સે ઇસકા ભાન હૈ અથવા નહીં. નંદ મહારાજ કો ઇસકો જાનકારી હૈ કે નહીં? યે લડકા મેરા નહીં હૈ, વસુદેવ કા હી હૈ. વસુદેવ કા હી લડકા થા ના? લેકિન વસુદેવજી જાન રહે થે ફિર ભી પૂછ રહે થે. કેમ પૂછ રહે થે? કે નંદ કો યહ જાનકારી હૈ કે નહીં કે પુત્રી હુઈ થી ઓર પુત્રી કો મેં ચુરા કર લે ગયા થા ઓર અપના પુત્ર રખ દિયા થા. આજને વસુદેવજી જાનતે હુએ ભી એસે પૂછ રહે થે કે આપકા પુત્ર હુઆ હૈ ઓર વૃદ્ધા અવસ્થા મે હુઆ હૈ. બડા સૌભાગ્ય કી બાત હૈ કે આપકો કોઈ સંતાન નહીં થે લેકિન ઇસ વૃદ્ધા અવસ્થા મે એક સંતાન હુઆ હૈ. તો વાસ્તવ મે ઉનકા સંતાન નહીં થા તો વસુદેવ કહીં સંતાન થા? વસુદેવજી રાત મે લે ગયે ઓર અપને પુત્ર કો રહ કરકે જશોદા કો પુત્રી હુઈ થી ઉસકો લે આયે થે. લેકિન ફિર ભી પૂછ રહે હૈ. इसका पूछने का कारण ये था कि वो जानना चाहते थे कि ये रहस्य को नंद को जानकारी है कि नहीं. ये रहस्य को कोई नहीं जानता था. केवल तीन लोग जानते थे, कौन कौन? वसुदेव देवकी और कृष्ण भगवान, और वो लड़की भी जानती थी जोग माया जोग माया भी जानती ही थी, तो यही लोग जानते थे। नंद वसुदेव, नंद जसोदा नहीं जानते थे, क्योंकि जोग माया में, जोग निद्रा में सब लोग सो गए थे, जोग माया ने सबको सुला दिया था। जसोदा को भी नहीं मालूम था कि लड़की मुझे हुई थी, वसुदेव जी आए थे और ले गए। वसुदेव जी क्यों ले गए कि दोनों में बहुत मित्रता थी, दोनों बहुत मित्र थे, अगर जान भी जाते, जग भी जाते तो कह देते कि ऐसी बात है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी था कि मुझे गोकुल में नंद महाराज के यहाँ छोड़ाओ, भगवान ने आदेश दिया था ना कि मैं गोकुल में जाना चाहता हूँ और मुझे गोकुल में ले जाकर नंद भवन में छोड़ाओ। और भगवान ने सारी व्यवस्था की और जोग माया के द्वारा देवकी और वसुदेव के जो हाथ में हथकड़ी, पांव में बीड़ी लगा था, खुल गए थे, वो बंधन से मुक्त हो गए और जेल के फाटक खुल गए थे, जो जेल में बड़े बड़े ताले लगाए थे सब स्वतः खुल गए, और जितने भी बड़े बड़े चौकीदार थे, जो प्रहरी थे, वो सब सो गए। जैसे वॉचमैन लोग नहीं कभी कभी खड़े खड़े सो जाते, वॉचमैन लोग कभी कभी खड़े खड़े दीवाल का सहारा लेकर सो जाते या चेयर में बैठकर सो जाते हैं। तो भगवान ने स्वयं ये व्यवस्था दिया कि देवकी वसुदेव जी मुझे गोकुल में रखाएं, भगवान ने सब व्यवस्था की थी। जितने भी बड़े बड़े मोछ वाले, भाला बरछा वाले वॉचमैन थे, और विशेष करके मगध से आए थे, मगध नरेश जरासंध ने, बहुत बलवान बलवान, बहुत बड़े बड़े मूछ वाले, बहुत भयंकर शरीर वाले वॉचमैन थे, जो चौकीदार थे, पहरेदार, विशेष करके जेल की जो निगरानी करने वाले थे, वो सब मगध से आए थे। मगध नरेश जरासंध ने भेजा था, क्यों भेजा था? अपने दामाद की सुरक्षा के लिए। कंस से जरासंध की दो पुत्रियों का विवाह हुआ था, कौन कौन? दो पुत्रियों का विवाह हुआ था, कौन, क्या नाम था? नहीं नाम याद है, अस्थि और प्राप्ति, अस्थि अप्राप्ति, दो दो कन्याएं थी जरासंध की, अस्थि और प्राप्ति, दोनों का विवाह कंस से हुआ था। तो दामाद के विषय में जब ऐसा भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी, कि देवकी का ही आठवां पुत्र इसको मारेगा, तो बहुत चिंता हो गई ससुर को, ससुर ही बहुत चिंता में हो गए कि हमारी दोनों दोनों कन्याएं विधवा हो जाएंगी। ससुर को भी चिंता होता है ना, भाई दोनों पुत्री हैं, अभी हाल में ही विवाह हुआ था, तो विधवा रह जाएंगी, कोई संतान भी नहीं थे, अभी संतान भी नहीं हुए थे ना, हुए थे नहीं हुए थे? तो जरासंध है अपने दामाद को मदद करने के लिए बहुत सारे पहरेदार, दरवान, दरवान भी बोलते हैं ना, दरवान भेजा था, चौकीदार भेजा था, अब अंग्रेजी में सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, जैसे हम लोग दरवान बोलते हैं, दरवान, दरवान ही बोलते हैं ना, अपमान नहीं, चौकीदार, पहरेदार, प्रहरी, इसे बोलते हैं। तो जेल में जल की सुरक्षा बहुत सुंदर ढंग से बनाई गई थी, जल से कोई जा नहीं सकता था इधर उधर, कोई न कोई अंदर से बाहर आ सकता था, न बाहर से कोई अंदर जा सकता था। जेल पर बहुत बड़े बड़े अलार्म सायरन लगाए गए थे, कोई ऐसे टच किया तो बहुत जोर से आवाज आता था, से गाड़ी में लगाया जाता है ना, गाड़ियों में भी सायरन लगाया गया कि गाड़ी कोई चोर चुराने के लिए कोशिश करता तो आवाज होता है, अलार्म बजने लगता है। तो जेल में भी बहुत बड़े बड़े अलार्म लगाए गए थे, कोई तोड़ने का प्रयास करेगा तो जोर से आवाज होता था। और जेल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगाए गए थे, इलेक्ट्रिसिटी, हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी, कि कोई टच करेगा तो मर जाएगा। और उसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े गहरे नाले बनाए गए थे, उसमें कोई जाएगा तो डूब जाएगा, नहीं तो मगरमच्छ थे खा जाएंगे, इतनी सुरक्षा थी। आज भी राजाओं के जो किला होते हैं, जैसे शिवाजी का किला है ना महाराष्ट्र में, बहुत जगह है अब देखे हो, समुद्र के बीच में है, बड़े बड़े पहाड़ों के चोटियों पर किला है, बहुत सुरक्षित है, वहां शत्रु नहीं जा पाएंगे, जाएंगे भी तो मार दिए जाते हैं, जाने का रास्ता बहुत संकीर्ण होता है, और ऊपर से वो घात लगाकर बैठे रहते हैं, मार देते हैं लोग। शिवाजी के बहुत सारे किला हैं जंगल में, ऊंचे ऊंचे, जहां जाने का रास्ता बहुत संकीर्ण है, कोई जाएगा तो एक आदमी ही जा सकता है, तो शत्रु आक्रमण नहीं कर सकते हैं, एक साथ ग्रुप में आक्रमण नहीं कर पाएंगे, ऐसे किला बनाए जाते थे। भरतपुर का किला हम लोग देखे हैं, राजा का किला है, वो भी बहुत ऐसा ही बनाया गया है, चारों तरफ पानी का नाला बनाया गया है, उसमें मगरमच्छ पालते थे राजा लोग, आज भी ऐसा है। तो कंस ने उस जेल के चारों तरफ बहुत बड़ा नाला बनाया था, बहुत गहरा, उसमें बहुत भयंकर मगरमच्छ घड़ियाल सब थे, कोई जाएगा तो खा जाएंगे, बहुत सुरक्षित था। लेकिन फिर भी भगवान की योजना से, रूपा जी लगता है कि आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल, जो भगवान चाहते हैं वो असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान की इच्छा थी तो सारे कैदी, अरे सारे वॉचमैन सो गए गहरे निद में, दरवाजे के, जेल के सारे दरवाजे खुल गए, और जो भी रास्ता था वो सुगम हो गया, दुष्कर्म सुकर्म भवेत, जो कठिन मार्ग था बहुत सरल हो गया, और जमुना जी में जो जल का प्रवाह था वो कम हो गया। वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर जा रहे थे तो जमुना जी में बहुत जल बह रहा था, बहुत जल प्रवाह था, लेकिन जमुना जी ने मार्ग दे दिया था, जैसे भगवान राम को समुद्र ने मार्ग दिया था, हिंद महासागर। भगवान श्री राम लंका में जब जाना चाहते थे तो जैसे हिंद महासागर ने उनको मार्ग दिया था, रास्ता दिया था, वैसे जमुना जी ने मार्ग दिया, जल नीचे हो गया, और वसुदेव जी इस तरह से गए, और जा करके नंद भवन में गए, अब लोग गए हो ना गोकुल नंद भवन, कितने लोग गए हैं, 84 खंभा है ना आज भी, कब गए थे आए? एक साल पहले, आप नहीं गए, आप गए हैं ब्रजमन पत्रिका, तो गोकुल में आज भी नंद महाराज का वो भवन है जहां वसुदेव जी कृष्ण को ले जाकर रखे और जोग माया को ले आए थे, जशोदा को जो पुत्री हुई थी जोग माया, जोग माया भगवान की छोटी बहन है, ले आए थे। तो वसुदेव जी के अतिरिक्त गोकुल में कोई नहीं जाना, जसोदा जी भी नहीं जानी कि वसुदेव जी आए थे और हमारी पुत्री को ले गए और अपने पुत्र को छोड़ दिए। सब गोकुल भी एकदम गहरे निद्र में सब लोग सो गए थे। जोग माया ने सबको जोग निद्रा में सुला दिया। तो कभी कभी आदमी इतना गहरा निद्र में सो जाता है कि उसका खाट सहित लोग उठा कर ले जाते हैं। हमारे गांव में एक व्यक्ति खाट पर सोया था बाहर गर्मी के महीने में, तो कुछ लोग मजाक करने के लिए उसको खाट सहित सोए ले जाकर श्मशान भूमि में रखाए। अब जब जगा तो बोला कि ये कहाँ आ गया मैं। सच्ची घटना है। अरे गांव में एक आदमी को सोए में उसके खाट सहित लोग उठा करके तीन चार लोग लगे और ले जाकर श्मशान जहां पर लोगों को जलाया जाता है, गांव में होता है ना श्मशान भूमि। अब उसको नींद खुली सुबह में तो देखा कि ये कहाँ आ गया। जोग माया, जैसे जोग माया का ये होता वैसे जोग निद्रा में सो गया था। ऐसा आपके वहां होता है ना, कभी कभी हुआ है आपके यहाँ। तो वसुदेव जी इसी रहस्य को नंद महाराज से जानना चाहते थे कि ये जानते हैं, ये जान तो नहीं गए हैं कि ये वसुदेव ही अपने लड़के को हमारे यहां रखाया है। वसुदेव जी के मन में संशय था कि इस रहस्य को कोई जाने ना, इसलिए नंद महाराज से यही जानना चाहते थे। और नंद महाराज को वास्तव में जानकारी नहीं था ये सब कि वसुदेव जी का ये लड़का है कृष्ण, जिसको मैं अपना लड़का समझकर पालता हूं। तो आपस में जब बात हो रही थी तो वसुदेव जी बड़े प्रेम से पूछ रहे थे, ये भी कहे कि हमारा जो पुत्र बलराम हो तो आपको ही माता पिता कहता होगा, आपको ही अपना पिता मानता होगा। जो रोहिणी के पुत्र थे ना, रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी थी, तो रोहिणी नंद महाराज के यहाँ रहती थी। अब बलराम का वही जन्म हुआ था तो पूछ रहे हैं कि हमारा पुत्र बलराम तो आपको ही पिता मानता होगा, आपको पिता मानता है ना। ये कृष्ण के बारे में नहीं कहे कि कृष्ण भी हमारा ही पुत्र है, नहीं। वो कहे बड़ा सौभाग्य की बात है कि वृद्धावस्था में आपको एक पुत्र हुआ है। से वृद्धावस्था में पुत्र नहीं होते हैं, होता भी है तो पुत्री होती है, लेकिन आपको पुत्र हुआ है, बड़ा सौभाग्य है। आपका पुत्र कैसा है? जैसे कोयल जो है अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रखाती है, होता है ना, और कौवे के अंडे को छुपा देती है या गिरा देती है, अच्छा है ना। लोक में ऐसी बातें होती हैं कि कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है, है ऐसा आप जानते हैं क्या करती है कोयल? क्या करती है? अंडा तो देती ही है, लेकिन कहाँ देती है? हम कहाँ करें कि बच्चा देती है? कहाँ अंडा देती है? कौवे के घोंसले में क्यों देती है? कि पालन पोषण नहीं करना पड़ेगा। कोयल भी आलसी है, आलसी है तभी ना कौवे के यहाँ कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवे के अंडे को गिरा देती है, चाहे लेकर कहीं छुपा देती होगी। तो कोयल जैसे वसुदेव जी किए थे, वसुदेव जी भी यही काम किए थे, लेकिन वसुदेव जी इसलिए किए थे रक्षा के लिए, भय से किए थे कि कहीं कंस तो मारने वाला ही है, कंस मारता ही ना, और भगवान का आदेश था, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए भगवान कहे कि मुझे गोकुल में ले जाओ, भगवान गोकुल में कृष्ण जसोदा और नंद को सौभाग्य प्रदान करना चाहते थे, गोकुल में भगवान लीला करना चाहते थे। जेल में उतना आनंद नहीं आएगा ना, जेल में क्या करेंगे, खाने को भी नहीं मिलेगा। गोकुल में स्वच्छंद कुछ लीलाएं करना चाहते थे, तो भगवान कहे मुझे गोकुल में ले चलो। तो भगवान के आदेश का पालन करने के लिए वसुदेव जी गोकुल में ले गए और कोयल की तरह वहां रह करके जसोदा के पुत्री को ले आए। से कोयल कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है और उसके अंडे को ले आ करके कहीं रख देती होगी, चाहे लोग बोलते हैं गिरा देती है, नष्ट कर देती है। कोयल बहुत क्रूर है, बोलती बहुत मधुर है। कोयल बोलती तो बहुत मधुर है लेकिन हृदय बहुत क्रूर है, तभी ना कौवे के अंडे को नष्ट कर देती है और अपने अंडे को रख देती है। तो यहाँ कोयल जैसा नहीं है, वसुदेव जी भगवान के आदेश का पालन किए और ये रहस्य को कोई नहीं जाना। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यह एक बहुत बड़ा रहस्य था। रहस्य ऐसे तो केवल देवकी वसुदेव ही जानते थे, वसुदेव जानना चाहते थे कि नंद महाराज को पहले से इसका भान है कि नहीं, भान है अथवा नहीं। किंतु पूछने पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि कृष्ण जन्म तथा यशोदा की देखरेख में उनके छोड़े जाने का रहस्य अभी गुप्त है। वसुदेव जी को विश्वास हो गया कि अभी भी ये रहस्य गुप्त है, ये बात को आज तक कोई जाना नहीं कि वसुदेव ऐसा हेरा फेरी किए थे। ये कृष्ण जो है वसुदेव का ही लड़का है, नंद महाराज केवल पालन किए हैं। इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं जाना है, वसुदेव जी को पूर्ण विश्वास हो गया, इसीलिए पूछना चाहते थे। इससे किसी प्रकार का खतरा न था, अगर ये मालूम पड़ जाता तो कंस बहुत परेशान करता ना नंद को भी, वसुदेव को, वसुदेव को भी परेशान करता और नंद को भी कि तुम लोग बदमाशी किए हो, चोरी किए हो, वसुदेव के ऊपर और आफत आ जाती। कंस को अगर मालूम हो जाता कि ये वसुदेव रात में जो है ऐसा किया है और अपने पुत्र को गोकुल में ले गया है और लड़की ले आया, ये बात को अगर कंस को मालूम होता तो नंद का भी खैर नहीं रहता और इनका भी खैर नहीं रहता। नंद का भी हालत खराब हो जाता है, ये दोनों मिलकर ऐसा काम किए हैं, अब वसुदेव का हालत तो खराब होता ही। तो जब यह पूछे और नंद महाराज से जब उत्तर मिला तो वसुदेव जी आश्वस्त हो गए कि इस गुप्त रहस्य को कोई जाना नहीं है, नंद तक नहीं जाने हैं। अगर नंद को भी कहीं मालूम हो जाता कि नहीं ये तो आपका ही पुत्र है, आप ही छोड़कर गए थे, तो भी खतरा हो सकता था। कि बात जो है नीति शास्त्र में कहा गया कि दो कान से चार कान में बात जाती है तो उसको फैलने की आशंका रहती है, दो कान तक है तो उसको फैलने की कम संभावना रहती है, और दो कान से चार कान तक जाता है तो फैलने की संभावना रहती है। तो वसुदेव जी को विश्वास हो गया कि नंद को ये बात मालूम नहीं है, नंद को यही विश्वास है, यही ये है कि कृष्ण हमारा ही पुत्र है, अब भी गुप्त है यह रहस्य, अब भी गुप्त है। तो वसुदेव जी को ये हो गया कि इसमें कोई खतरा होने की बात नहीं है, अगर ये बात खुल जाती तो कंस को, कंस का गुस्सा का कोई ठिकाना नहीं रहता। कंस का जो गुस्सा है हाई, एकदम हाई लेवल पर जाता। इतना बड़ा वसुदेव ने धोखा किया, वसुदेव ने झूठ बोला, वसुदेव प्रॉमिस किए थे देवकी को बचाने के लिए। वसुदेव जी ने संकल्प लिया था कि जो भी पुत्र होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। वसुदेव जी कहे थे ना कंस से कि मत मारो, तुम्हारी बहन है, अभी विवाह का अवसर है, तुम्हें देवकी से क्या खतरा, इसके पुत्रों से खतरा है, तो मैं संकल्प लेता हूं कि देवकी से जो भी संतान होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तो वसुदेव जी कितना झूठा साबित होते, ये बात अगर मालूम हो जाती तो। कंस कितना उनको लताड़ता, कितना उनको धिक्कारता कि तुम झूठ हो, तुमने प्रॉमिस किया था और इस तरह से तुम धोखा दिया। तो वसुदेव जी इसी बात को अभी प्रमाणित करने के लिए कि देवनंद को ये मालूम है कि नहीं मालूम है, तो आश्वस्त हो गए कि ये बात को अभी तक तो कोई जाना नहीं मेरे अतिरिक्त। इससे किसी प्रकार का खतरा नहीं था क्योंकि कंस को पता नहीं था। जब नंद को ही पता नहीं है तो कंस को कहां से पता चलेगा? अगर कंस को पता हो जाता तो बहुत खतरा होता। तो कंस को पता नहीं था, इससे पहले क्या हो चुका है, इसे किसी प्रकार का खतरा नहीं था क्योंकि कंस को पता नहीं था कि इससे पहले क्या हो चुका है। कंस को किसी को यह पता नहीं था कि रात में दरवाजा खुल गया, देवकी वसुदेव भी बंधन से मुक्त हो गए, फिर अपने पुत्र को गोकुल में ले गए, वहां से पुत्री ले आए, बात किसी को पता नहीं था। इसलिए नंद से भी ये अभी प्रमाणित हो गया। नंद महाराज भी कहे कि नहीं, बड़ा आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का शुभ कामना है, आप लोगों का आप लोगों की प्रार्थना है कि मुझे वास्तव में पुत्र हुआ है बुढ़ापे में। वसुदेव जी पूछे कि आपको पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है? जानकर भी पूछ रहे हैं कि सुना है कि आपको एक संतान हुआ है वृद्धावस्था में, तो पुत्र है या पुत्री है? ये वसुदेव जी तो जानते ही थे, अपना ही लड़का छोड़कर आए थे, फिर भी पूछ रहे हैं कि आपको पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। तो नंद जी कहे नहीं, एक पुत्र हुआ है। तो बोले बहुत खुशी की बात है। वसुदेव जी अनजान होकर पूछ रहे थे। इस तरह वसुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से नंद महाराज से पूछा, उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है या पुत्री। वसुदेव जानते थे कि यशोदा को कन्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि आपको पुत्र हुआ है कि पुत्री हुई है। इसके पीछे वसुदेव का भय, वसुदेव को हमेशा भय बना रहता था कि इस रहस्य को कहीं कंस को न पता चल जाए। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए चोरी किया है, मान लीजिए आप इनके पॉकेट से पैसा चोरी कर लिए हो, तो भय रहता है ना कि उसको मालूम न पड़े। तो कभी कभी चोर ही पूछता कि प्रभु जी मिला कि नहीं, आपको किस पर संदेह है? कभी कभी जो चोरी किया रहता है वही व्यक्ति पूछता है कि मैं सुना आपका पैसा चोरी हो गया, कौन ऐसा किया बदमाश, बड़ा गड़बड़ हो गया है, आपको किस पर संदेह है? नहीं भाई, मुझ पर तो किसी पर संदेह नहीं है, लगता है कहीं गिर गया होगा। तो चोर बोलते हैं हाँ कहीं गिर भी गया होगा, चुराएगा तो नहीं कोई पैसा। तो चोर फिर ये हो जाता है कि हाँ इनको डाउट नहीं है, मुझ पर भी बोल रहे कि नहीं कहीं गिर गया होगा, यहाँ कोई नहीं लेगा। तो चोर को ये हो जाता है कि ये आदमी को बिल्कुल मुझ पर संदेह नहीं है। तो वसुदेव जी को भी भय था कि कहीं कंस को मेरे ऊपर संदेह न हो जाए कि अरे भविष्य आकाशवाणी में तो पुत्र का ये हुआ था, कंस इस पर संदेह कर सकता था ना कि वसुदेव क्या हुआ। देवताओं ने तो आकाशवाणी करके कहा था कि पुत्र होगा आठवां, पुत्री कैसे हो गई, तो क्लास लगा सकता था, उनके पीछे इंक्वायरी लगा सकता था कि बताइए कौन झूठा है, देवता लोग झूठ बोले हैं कि आपने कुछ किया है, ये प्रश्न उठ सकता था ना। वसुदेव को ये संदेह था कभी कभी कि कहीं ये बात खुल न जाए, कहीं कंस के अंदर संदेह न हो जाए कि ये कैसे हो गया वसुदेव जी। देवता लोग तो बोले थे पुत्र होगा आठवां, लेकिन पुत्री कैसे हो गई। कंस के मन में भी संदेह हुआ था, जब मारने के लिए लिया तो संदेह हुआ था कि भाई ये पुत्री कैसे हो गई, फिर उसके मन में हुआ कि ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं लगता है, फिर ये संदेह हो गया कि विष्णु बहुत मायावी है, लड़का के जगह लड़की का रूप बना लिया होगा। वसुदेव पर संदेह नहीं हुआ क्योंकि कंस को वसुदेव के साधुता पर कोई संदेह नहीं था कभी भी, कंस भी जानता था कि वसुदेव साधु आदमी है, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी अपने वचन पर कभी भी अपने वचन को बदलेंगे नहीं। वसुदेव जी के ऊपर कंस को संदेह नहीं था, जानता था कि वसुदेव अपने वचन के पक्का आदमी है, जो बोला है वो जरूर करेगा। लेकिन फिर मन में सोचा कि विष्णु बहुत मायावी है, वह बहुत हेरा फेरी करने वाला आदमी है, वो सुअर का रूप बना सकता है, नरसिंह का रूप बना सकता है, सत्यव्रत महाराज के लिए मछली का रूप ले लिया, वो कुछ भी रूप बना सकता है, शायद वही लड़की का रूप बनाया होगा मुझे छलने के लिए, मुझे भ्रमित करने के लिए। कंस को यह संदेह हुआ, लेकिन देव वसुदेव पर संदेह नहीं हुआ, नहीं तो पूछता न बुला कर कि क्या हो गया, कैसे लड़की हो गई, आपने क्या किया, जेल से कहीं बाहर तो नहीं गए, एक्शन तो नहीं किया, इस संदेह नहीं हुआ, जानता था कि जेल से एक चींटी भी बाहर नहीं जा सकती है, जेल की ऐसी सुरक्षा बनाई गई थी कि कोई जा नहीं सकता था, इसलिए पूर्ण उसको विश्वास था कि इसके अंदर जो है वो कभी बाहर नहीं जा सकता है। उसको क्या मालूम कि कृष्ण इतने छलिया हैं, भगवान गीता में मैं छलकारियों में दूत क्रीड़ा हूं, सब बोले ना भगवान दूतम छलेता मस्मी, भगवान को कोई छल नहीं सकता है, भगवान छलकारियों में भी सबसे बड़े छलकारी हैं, इसलिए कृष्ण को ब्रज में लोग छलिया बोलते हैं, भगवान किसी को भी छल सकते हैं, बलि महाराज को छलने के लिए बौना का रूप बना कर गए और तीन पग भूमि के लिए उनके यहाँ भिक्षुक वृत्ति भिक्षा मांगने गए और तीन पग में ही सारा, दो पग में ही सब कुछ ले लिए, तो भगवान से बड़ा कोई और छलकारी है नहीं, भगवान से बड़ा कोई चोर भी नहीं है, चाहे जो चीज में भी गए, चाहे चोरी में छल करने में उनसे आगे कोई नहीं है, तो कंस को भगवान छल दिए, छलकारियों में छल करने, जल से बाहर चले गए, सब कुछ यथावत लग रहा था और वापस जेल में वसुदेव जी, तो वैसे ही एज इट इज सब कुछ हो गया, जैसे जहां जो ताला था वहां लग गया, कोई पांव का निशान भी नहीं था कि कोई बाहर गया है, देखो पांव का निशान है, वसुदेव जी गए तो बरसात में कीचड़ था, पानी था, तो पांव में आए तो कीचड़ लगा होगा ना, तो फुटप्रिंट होता लेकिन कुछ निशान नहीं था, मानो कोई सफाई कर दिया गया। जीटे जी, थोड़ा भी कीचड़ पांव पांव में कीचड़ लगता है तो पांव का चिन्ह उभर जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो भगवान को छलने में, कंस को छलने में क्या लगता है? मेरे भाई नंद महाराज, इस वृद्धावस्था में भी आपका कोई पुत्र न था और आप निराश हो चुके थे, अतः अब जबकि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है तो अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण है। यही वसुदेव जी पूछ रहे हैं कि हे भाई नंद महाराज, वृद्धावस्था में आपको पुत्र उत्पन्न हुआ है, यद्यपि आपको कोई पुत्र नहीं थे और आशा भी नहीं थी कि पुत्र होंगे, आप सभी लोग निराश हो चुके थे, फिर भी आपको पुत्र हुआ है। रूपा जी लिखते हैं कि प्राय वृद्धावस्था में संतान होता भी है तो पुत्री होती है, ये आपको पुत्र उत्पन्न हुआ है, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। क्या सौभाग्य की बात है, सारा खेल खेल गए और आप बुझौल बुझा रहे हैं। वसुदेव जी सारा खेल खेल गए और पहली बुझा रहे थे कि आपको पुत्र हुआ है। वाह, कितना वसुदेव जी ये चलाक हैं, करेंगे आपको पुत्र उत्पन्न हुआ है, बड़ा सौभाग्य की बात है, जबकि सारा खेल रात में खेल दिए थे, पुत्र को अपने रह करके पुत्री को ले आए थे। तो ये जानना चाहते थे, उनको भय था कि इस रहस्य को कोई जान न जाए, अगर जान जाएगा कोई तो फिर मेरी तो बदनामी होगी ही, लोग कहेंगे वसुदेव भी बहुत बड़ा झूठा है। सब लोग कहते ना कि जब प्रोमिस किया था तो क्यों ऐसा किया, जब तुमने कंस से प्रोमिस किया था तो क्यों हेरा फेरी किया, कंस तो शासन करता ही, चाहे मारता चाहे जो करता चाहे फांसी देता, समाज में भी अपकीर्ति होता कि झूठ बोले, आपने जब कह दिया तो उसका पालन करना चाहिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले के लोग वचन देते थे तो प्राण भी जाए तो भी उसका पालन करते थे, यही भय बना था कि बात अगर खुल जाएगी तो कंस का क्रोध का कोई ठिकाना नहीं होगा, कंस क्या सजा देगा। अगर ये बात कंस को मालूम हो जाती तो कंस क्या सजा देता वसुदेव को, उनको बहुत मार मारता, गर्म पानी करके डालता, कील ठोक करके पूछता कि तुमने क्यों ऐसा किया, बहुत सजा मिलता वसुदेव को, और ये भी कहता कि तुम सत्यवादी बनता है, प्रतिज्ञा किया था तुमको तो सब लोग साधु, वसुदेव को सब लोग बहुत साधु पुरुष मानते थे, सत्यवादी, और तुम इस तरह से किया, झूठ बोला, मैं तो कहा था कि जो भी पुत्र होंगे दे दूंगा। तो भय रहता था वसुदेव को कि हमने रात में ऐसा चोरी से यशोदा के पुत्री को लाया और पुत्र अपना रख दिया, तो इस बात को कोई जान न पाए। इसी बात को जानने के लिए पूछे कि नंद को भी ये बात मालूम तो नहीं है, कहीं नंद को मालूम हो जाएगी तो हो सकता है बात खुल जाए, कहीं बात धीरे धीरे बढ़ जाए। तो अपने भय के निवारण के लिए, इस संदेह को निवारण के लिए उन्होंने पूछा कि आपको पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, मैं सुना है आपको वृद्धावस्था में पुत्र हुआ, यद्यपि इसकी कोई आशा भी नहीं थी, कोई आशा नहीं करता था कि अब आपको पुत्र होंगे भी, लेकिन बड़ा सौभाग्य है कि आपको संतान हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, लड़की है या लड़का है? तनंद महाराज कहे कि नहीं नहीं भाई, पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो उनको अंदर तो जो संदेह था ये हो गया कि नंद को भी मालूम नहीं है कि ये पुत्र हमारा ही है, यद्यपि दोनों पुत्र वसुदेव के ही थे, कृष्ण और बलराम। एक तो खैर बलराम के विषय में तो मालूम सबको था ही कि रोहिणी का पुत्र है, रोहिणी वहां रहती ही थी, लेकिन कृष्ण के विषय में किसी को नहीं मालूम पड़ा कि वसुदेव का ही पुत्र है। बाद में मालूम पड़ेगा, बाद में मालूम तो हो ही जाएगा ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कहाँ जाने हैं? एक पांव पर खड़े हो जाइए, बंद करें ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद है।